नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल रात इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक से हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी।
सरकार इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत के राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास शांति विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास से परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भारत के प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। विधेयक का समर्थन करने के लिए सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विधेयक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को गति देगा, हरित विनिर्माण को सक्षम बनाएगा और देश तथा दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को निर्णायक गति देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर चर्चा की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर आयुष क्षेत्र के माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान की 2 दिन की यात्रा कल संपन्न हो गई। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत ने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक ने मस्कत में ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से हवाई अड्डे के कामकाज पर असर पड़ सकता है। मंत्रालय ने यात्रियों से अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहने, ताजा जानकारी के लिए अधिकृत स्रोतों से संपर्क करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेने का अनुरोध किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज सुबह मशहूर बंगाली सांस्कृतिक संगठन छायानाट के परिसर में तोड़फोड़ की गई और उसमें आग लगा दी गई। ये घटना इनकलाब मंच के संयोजक शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर के कुछ घंटे बाद हुई है। घटना राजधानी के धनमंडी इलाके में छायानाट संस्कृति भवन में तड़के करीब 1:30 बजे हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा मुक्ति दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने मुक्ति दिवस पर उन लोगों के अदम्य साहस को याद किया जिन्होंने अन्याय को सहने से इनकार कर दिया था और हिम्मत तथा पक्के इरादे के साथ आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।